पढ़ेंगे जो समाधियां वृंदावन में श्रील महानंदी स्वामी के द्वारा लिखित है। मधु पंडित गोस्वामी बजना भगवान कृष्ण के जो प्रपौत्र हैं, इन्होंने मूल गोपीनाथ विग्रह को वृंदावन में स्थापित किया था 5000 साल से भी पहले। आप जानते हैं भगवान कृष्ण के प्रपौत्र यानी पुत्र के पुत्र के पुत्र बजनाभ ने जो मूल गोपीनाथ विग्रह हैं उनकी स्थापना की थी, और 500 साल के लगभग पूर्व परमानंद भट्टाचार्य ने इस विग्रह का खोजा था जमीन के अंदर बंसीवट में यमुना के तट पर। परमानंद भट्टाचार्य ने खोजा। मधु पंडित गोस्वामी जो कि श्री गदाधर पंडित के शिष्य थे, इन्होंने इस गोपीनाथ विग्रह का पूजन किया। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि श्री गोपीनाथ जी जो कि कृपा के सागर हैं, हमेशा क्रीड़ा करते हैं यमुना के तट पर बंसी बट में। उनके शरीर का जो सौंदर्य है वो किसी के भी मन को चुरा लेता है जो उन्हें दर्शन करे। गोपीनाथ जी के सुंदर शरीर की का जो माधुर्य है वो जब हृदय में प्रवेश करता है तो तुरंत ही जो दामनल संसार दामनल की जो अग्नि है वो शांत हो जाती है। अभी गोपीनाथ विग्रह जो मूल है वो जयपुर राजस्थान में निवास करते हैं। मधु पंडित गोस्वामी ने श्रीनिवासाचार्य पर कृपा की। विद गोपीनाथ हैज गार्लैंड बिफोर श्रीनिवास नरोत्तम एंड श्यामानंद टुक द बुलक कार्ट ऑफ गोस्वामी ग्रंथ हैज फ्रॉम वृंदावन। अच्छा, तो जब श्रीनिवास और नरोत्तम और श्यामानंद ने एक बैलगाड़ी में गोस्वामियों के ग्रंथ लिए थे वृंदावन से कहां जाने के लिए, गौड़ देश में जाने के लिए, तो मधु पंडित गोस्वामी ने श्रीनिवासाचार्य पर कृपा की थी। कैसे, गोपीनाथ जी की जो माला है वो उनके गले में पहनाई। और आप जानते हैं कि इसके ही प्रभाव से जो मधु पंडित गोस्वामी ने जो माला पहनाई थी गोपीनाथ जी की, इसी के प्रभाव से श्रीनिवासाचार्य बहुत बड़े संकट में पड़ गए थे लेकिन उस संकट से छूटे। तो आपको पता है कि दीर्घ विष्णुपुर में जो गोस्वामी के ग्रंथ हैं वो सब लूट लिए गए थे, और श्रीनिवासाचार्य ने ही फिर किसी प्रकार से उनका पता लगाया और वहां के राजा वीर हमीर को अपना शिष्य बनाया, और फिर दीर्घ विष्णुपुर में पूरे नगर में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि मधु पंडित गोस्वामी के जो गोपीनाथ विग्रह हैं उनके फूलों की माला चूंकि श्रीनिवासाचार्य के गले में पहनाई गई थी इसलिए श्रीनिवासाचार्य इतना बड़ा कार्य कर सके। गोलोक वृंदावन में मधु पंडित गोस्वामी मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं और चंपकलता सखी के दल में हैं। आप जानते हैं 8 सखियां अष्ट सखियां हैं जो राधा कृष्ण की, उनमें एक चंपकलता है, और सखियों की और भी सेविकाएं दासियां हैं, तो उनमें से एक ये है मंडली सखी नाम की दासी है। मधु पंडित गोस्वामी की जो समाधि है ये राधा गोपीनाथ मंदिर जो वृंदावन में है उसके प्रवेश के दाहिनी तरफ है। शिला मधु पंडित गोस्वामी प्रभाव तिथि महामहोत्सव की। अभी जाह्नवा माता के बारे में हम पढ़ेंगे। श्री नित्यानंद की 2 पत्नियां श्री वसुधा और श्री जाह्नवा देवी, ये दोनों बलराम की जो नित्य भार्याएं हैं बारुणी और रेवती, इनके ही विस्तार हैं। आप समझ रहे हैं, बारुणी का विस्तार है वसुधा और रेवती का विस्तार है जाह्नवा देवी। आज जाह्नवा देवी का आविर्भाव है जो कि रेवती की अवतार है। तो पंच तत्व की तिरुभाव के बाद भगवान चैतन्य के जो बहुत से नित्य पार्षद हैं उनका भी तिरुभाव हो गया। तो फिर बहुत बड़ा संकीर्तन उत्सव मनाया गया था खेतुरी में गौर पूर्णिमा के दिवस। हजारों भगवान चैतन्य के जो अनुयायी थे जैसे नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, वृंदावन दास, मुरारी चैतन्य परमेश्वर और मीन केतन राम, इन्होंने सबसे पहले इस खेतुरी संकीर्तन महोत्सव में भाग लिया था। इन्होंने गौरांग का जो आविर्भाव है उसको मनाया था बहुत ही भव्य कीर्तन के साथ और बड़ा ही अद्भुत नृत्य किया था और बड़ा ही स्वादिष्ट प्रसाद वितरण किया था। सुंदर जो है विग्रहों की स्थापना हुई थी जिनमें 6 सेट थे विग्रहों के। जाह्नवा माता ने बड़ा ही अद्भुत प्रसाद बनाया था उस समय और स्वयं ही वैष्णवों को परोसा था। आप समझ रहे हैं, जाह्नवा माता ने स्वयं ही अपने हाथ से प्रसाद बनाया था, बनाया मतलब पकाया, रंधन किया था और वैष्णवों को परोसा था। नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम नाम कीर्तन के समय श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और उनके जो पार्षद हैं अचानक ही प्रकट हो गए थे। सब लोग चमत्कृत हुए, कीर्तन के बीच में प्रकट हो गए थे। मां जाह्नवा जिनको कि भक्तों ने प्यार से नाम दिया था मां जाह्नवा, इन्होंने संपूर्ण गौर मंडल और ब्रज मंडल में भ्रमण किया और जहां भी वे गई गौर भक्तों ने प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत किया, उनकी सेवा की। और ये नित्यानंद स्वरूपिणी के नाम से जानी जाती थी। जाह्नवा देवी ने प्रेम भक्ति की बाढ़ ला दी और उन्होंने बहुत से नास्तिकों का उद्धार किया, पापियों का उद्धार किया अपने करुण प्रचार के द्वारा। श्रील भक्तिमनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं जाह्नवा माता की अपने कल्याण कल्प तरु इस ग्रंथ में। तो क्या कहते हैं, हे जाह्नवा देवी, अपने दिव्य गुणों की शक्ति के द्वारा अपने सेवकों पर आप दया कीजिए और इस अज्ञान को दूर कीजिए जो मुझे कष्ट दे रहा है और मुझे इस भाव बंधन से निकालिए। मैं आपके चरणों की शरण ले रहा हूं, आप नित्यानंद की शक्ति, भगवान नित्यानंद की दिव्य शक्ति साक्षात हैं और आप कृष्ण भक्ति की गुरु हैं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और अपने चरण कमलों की छाया प्रदान कीजिए, जो कि आपके चरण कमल कैसे हैं, कल्प वृक्ष के समान हैं। आपने असंख्य महा पापियों का उद्धार किया है तो कृपया इसी प्रकार मेरा उद्धार कर दीजिए। आज मैं आपकी कृपा की याचना करता हूं, ये जो नीच पापी है आपके पवित्र चरणों के नीचे गिरा हुआ है। ये प्रार्थना किसने की, भक्ति विनोद ठाकुर कौन से ग्रंथ में करते हैं प्रार्थना, उनका एक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने ये प्रार्थना लिखी है मां जाह्नवा के लिए, कल्याण कल्प तरु। ये कहा जाता है कि श्री जाह्नवा देवी ने इस संसार को छोड़ा था कैसे, वृंदावन में जो गोपीनाथ का विग्रह है उसमें ही वो समा गई, गोपीनाथ के विग्रह में समा गई, शरीर नहीं छोड़ा उन्होंने। मां जाह्नवा ने अपना शरीर नहीं छोड़ा, उनकी कोई समाधि नहीं है, गोपीनाथ जी के विग्रह में समा गई। तो जाह्नवा माता आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की अब सीता महारानी का आविर्भाव है। सीता माता के बारे में कुछ चर्चा हम करेंगे, और फिर आप लोग भी जो है कुछ कर सकते हैं अगर समय हुआ तो, क्योंकि हमें 9 बजे ठीक समाप्त करना है। तो कुछ तथ्य हैं जो पद्म पुराण से हमने लिए थे, तो उसमें सीता जी के बारे में कुछ बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जब सीता जी का विवाह हुआ था तो आप जानते हैं सीता जी की अवस्था कितने वर्ष की थी, 6 वर्ष की। जब सीता जी 6 वर्ष की थी तो उनका विवाह हुआ था, और भगवान राम उस समय 15 वर्ष के थे। तो भगवान राम 15 वर्ष के थे, बहुत छोटी अवस्था थी राम की। जब विश्वामित्र जी उनको ले गए उन राक्षसों का वध करने के लिए, जहां पर विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, तो सीता जी की अवस्था 6 वर्ष की थी। लेकिन 6 वर्ष में ही महाराज जनक को चिंता हुई। कन्या जो है अपने पिता को चिंता पैदा करती है जैसे ही वो विवाह के योग्य हो जाए। तो यहां पर आयु की बात नहीं है कि कितने वर्ष की है कन्या, कोई कन्या जो है थोड़ी अवस्था में ही विवाह के योग्य हो जाती है। तो इसी प्रकार की सीता देवी हैं, ये दिव्य कन्या है। आप जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई थी। सीता शीर समत्पन्ना, शीर कहते हैं हल्की नोक को। जब जनक महाराज जमीन को जोत रहे थे, एक विशेष प्रकार का यज्ञ था जिसको करने के लिए जनक महाराज उस यज्ञ भूमि को हल से जोत रहे थे, तो हल आप जानते हैं कि नीचे उसकी नोक चली जाती है, और जैसे ही वो हल खींचा जाता है तो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, है ना। तो जैसे हल की नोक से नीचे की मिट्टी ऊपर आई तो एक दिव्य कन्या उस मिट्टी से निकली, तो वो सीता जी हैं। और जैसे ही कन्या जो है जनक महाराज के महल में आई तो बहुत जल्दी ही चंद्रमा की कला के समान बढ़ने लगी। तो कुछ ऐसी कन्याएं होती हैं कि जो चंद्रमा की कला के समान बढ़ती हैं, और चंद्रमा की कला आप जानते हैं कैसे बढ़ती है। अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल गायब रहता है, लेकिन 15 दिन में ही कलाएं बढ़ते बढ़ते पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, 15 दिन में ही पूर्ण हो जाता है, है ना। तो उसी प्रकार से जो दिव्य कन्याएं हैं ये बड़ी होती हैं। तो 6 वर्ष की जब सीता थी तो उसी समय ही जनक महाराज को चिंता हो गई कि विवाह कैसे होगा। फिर कुछ बातें हैं एक धोबी की बात आती है जिसके कारण सीता जी का वनवास हुआ था। तो ये जो धोबी था ये पूर्व जन्म एक तोता था, जिस समय सीता जी छोटी थी तो ये जो धोबी था ये तोते के रूप में अपनी मैना के साथ रहता था वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। वाल्मीकि मुनि उस समय रामायण की रचना कर चुके थे और अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, रामायण पढ़ाते थे। ये रामायण आप जानते हैं आदि काव्य कहलाता है। और एक बार गोपी प्राणधन प्रभु उन्होंने भागवत प्रवचन दिया था तो बताया था कि 3 प्रकार का साहित्य है, एक तो वेद है और दूसरा पुराण है और तीसरा काव्य है। तो वेद तो जो है ना मतलब सनातन है, वेद तो सनातन है, अनादि है, वेदों का कोई आदि नहीं है, या वेद भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन जो काव्य है ये कवियों के द्वारा रचित होता है। तो जिनमें कि सबसे पहला जो काव्य है ये रामायण है, और सबसे पहले कवि कौन है, वाल्मीकि जी। इसलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। तो उसमें बता रहे थे गोपी प्राणधन प्रभु कि जो वेद है उनकी भाषा दूसरी प्रकार की है, और पुराणों की भाषा दूसरी प्रकार की है, और काव्य की भाषा दूसरी प्रकार की है। वेदों की भाषा कैसी है, आदेश कि ये करो ये करो, और नहीं तो ये कष्ट मिलेगा, ये परिणाम है, ये खराब परिणाम है,
तो वेदों का जो है ना केवल आदेश होता है, आदेश, कठोर आदेश कि पालन करना ही है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। वेदों की इस प्रकार की भाषा है। तो कुछ ब्राह्मण है जो कि वेदों का अध्ययन करते हैं, उनको ये पसंद है। और दूसरे ग्रंथ है पुराण। पुराणों की भाषा कैसी है? पुराणों की भाषा है मित्र की तरह है। जैसे एक मित्र समझाता है तो आदेश नहीं देता है, बल्कि वो सुझाव देता है, सलाह देता है, ये करो तो इससे ये फल मिलेगा, ये अच्छा परिणाम होगा। और फिर कई प्रकार की कथाएं पुराणों में होती हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है कि हाँ, इस प्रकार से काम करने से, इस प्रकार का आचरण करने से अच्छा परिणाम होता है, या जो गलत काम होते हैं तो उनको करने से बुरा परिणाम होता है। तो वो सब जो है ना पुराणों की भाषा है कि जो मित्र की तरह समझाते हैं। लेकिन जो काव्य है, काव्य बहुत ही कोमल भाषा होती है। काव्य की भाषा बहुत ही कोमल होती है और बहुत ही भावुकता उसमें होती है काव्य में, जिसमें कि बड़े ही कोमल भावों को जो है ना बड़े विस्तार से वर्णन किया जाता है ना। जैसे कि प्रेमिका है, वो प्रेमी के प्रति बड़े कोमल भाव रखती है, या प्रेमी प्रेमिका के प्रति बहुत कोमल भाव रखता है। तो काव्य की भाषा इस प्रकार की है जो बहुत ही कोमल है। तो कुछ जो ब्राह्मण हैं जो पुराणों का अध्ययन करते हैं, उनको पुराणों की भाषा पसंद है, और कुछ ब्राह्मण हैं जो काव्य का अध्ययन करते हैं, है ना। तो जो रामायण है ये आदि काव्य कहलाता है। तो मैं बता रहा था कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी और राम का चरित्र सब वर्णन कर दिया था, राम के जन्म के समय या राम के जन्म से पहले ही। तो ये जो तोता और मैना थे, ये वहां पर भी रामायण सीखते थे वाल्मीकि के आश्रम में, और आपस में भी चर्चा करते थे, तो सीताराम की चर्चा करते थे। लेकिन एक दिन ये वाल्मीकि जी के आश्रम से उड़ करके मिथिला के उपवन में आ गए, जहां सीता जी आती थी, उनका महल था और अपने सखियों के साथ सीता जी आती थी। तो ये जो तोता मैना थे, इन्हें कुछ पता नहीं कि सीता जी का उपवन है, और वो सीताराम की चर्चा कर रहे हैं। उनका जो ना दिन रात का ही काम था अपना जो वृक्षों के फल खाना और सीताराम की चर्चा करना। तो जब सीताराम की चर्चा कर रहे थे तो सीता जी ने सुना, और सीता जी ने जब सुना तो उनको उत्सुकता हुई कि ये लोग कैसे चर्चा कर रहे हैं। तो उन सखियों से कहा कि किसी प्रकार से इनको पकड़ो, हमें तो इनसे कुछ बात करना है। तो उनकी सखियों ने प्रयास करके तोता मैना को पकड़ लिया, और सीता जी पूछती हैं कि तुम लोग जो है किसकी चर्चा कर रहे हो। तो वो जो तोता मैना है वो बताते हैं कि हम वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहे काफी समय तक, तो वो अपने शिष्यों को जो सीताराम का चरित्र सिखाते हैं तो वो हमने भी सुना है, तो हम लोग वही चर्चा करते हैं। तो सीता जी कहती हैं कि तुम लोग जिस सीता की चर्चा कर रहे हो वो मैं ही हूं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वो जो है सीता जी को प्रणाम करके और थोड़ा सा भयभीत होकर के वो जो है चुप हो गए। तो फिर सीता जी कहती हैं कि देखो, जब तक राम नहीं आते हैं, राम विवाह करके मुझे नहीं ले जाते हैं, तब तक तुम लोग जो है मुझे राम कथा सुनाओ, क्योंकि मुझे बहुत ही सुंदर और मुझे आनंद आता है राम कथा सुन करके, तुम लोग मुझे राम कथा सुनाते रहो। तो सीता जी की कोई गलती नहीं थी जब सीता जी ने इच्छा प्रकट की। लेकिन ये दोनों पक्षी बोले कि नहीं नहीं, देखिए हम लोग तो पक्षी हैं, हम लोग तो एक स्थान में ठहर नहीं सकते, बंद नहीं हो सकते, तो हम लोग तो जो है उड़ना पसंद करते हैं, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाना चाहते हैं। तो सीता जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकते हो, लेकिन जो मैना है इसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, इसको मैं अपने साथ रखूंगी, इसको अच्छा भोजन खिलाऊंगी और ये मुझे रामकथा सुनाती रहे। तो इस तरह से जो मैना ने जब मैना को जब पता चला इसको यहाँ पिंजड़े में बंद रहना पड़ेगा, तो वो बड़े कष्ट में पड़ गई, सीता जी को मना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बंधन के भय से वो राम का जो है ना नाम लेते हुए उसने शरीर त्याग दिया, और शरीर त्याग करके वो तो भगवान राम के धाम में चले गए, साकेत धाम में चले गए। तो मैना ने कोई गलती नहीं की, लेकिन जो तोता था वो अपनी पत्नी के विरह में बड़ा दुखी हुआ और फिर सीता जी को उसने साप दिया। सीता जी पर गुस्सा हुआ और उसे साप दिया, जबकि उचित नहीं था, लेकिन सीता जी के लिए उसने बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया और उसने कहा, दुष्टे, तेरे कारण मेरी पत्नी का वियोग हुआ है, इसलिए आगे चल करके मैं कारण बनूंगा राम से वियोग जो तेरा होगा उसका कारण मैं बनूंगा। इस तरह से उस तोते ने साप दिया सीता जी को, तो मर करके ये तोता क्या बना, धोबी बना, अयोध्या का धोबी बना। धोबी नीच होता है, तो नीच धोबी बना क्योंकि महापुरुष का अपराध किया, सीता जी महादेवी हैं तो उनका अपराध किया, इसलिए धोबी के रूप में से जन्म लिया। फिर आप लोग जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध करके जब सीता को लाया अयोध्या में, तो फिर बाद में एक धोबी के कहने से ही सीता को वनवास हुआ, सीता का त्याग किया। तो ये वही धोबी था जिसने पहले सीता की निंदा की, तो धोबी बना, और अब इस बार उसने राम की निंदा की और क्या कहा अपनी पत्नी को कि मैं स्त्रीलोभी राम नहीं हूं, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा, जबकि उस स्त्री की कोई गलती नहीं थी, वो स्त्री अपने पिता के घर गई थी और पिता के घर जो है 4 दिन ठहर गई, तो उसके पिता जो ना उसको लेकर के आए थे अपने दामाद को देने के लिए, लेकिन वो बहुत जोर जोर से चिल्ला करके उसने जब ऐसी बातें कही जो कि भगवान राम को बहुत ही कष्टकारक हुई, बहुत ही कष्ट हुआ भगवान राम को, और उसमें उसे भगवान दंड देना चाहते थे लेकिन दंड नहीं दिया इस धोबी को, और सीता का त्याग कर दिया। लेकिन चूंकि इसने सीता की निंदा की थी फिर राम की निंदा की थी, इस कारण से इसका और ज्यादा पतन हुआ और ये धोबी फिर से धोबी बना, कहां पर, मथुरा में, और किसका धोबी बना, कंस का, कंस का धोबी बना, दुष्ट। और फिर आपको पता है इसने कृष्ण का अपराध किया, जब भगवान कृष्ण मथुरा को देखने के लिए आए तो रास्ते में धोबी मिला और भगवान बड़े प्यार से बात कर रहे थे कि भई हमें कुछ कपड़े दे दो, हमें कल राजा की सभा में जाना है और हम लोग गांव के वासी हैं, राजा ने हमको बुलाया है तो हमें राजा के कुछ कपड़े दे दो तो हम पहन करके जाएंगे, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। लेकिन बड़ा दुष्ट था इसलिए फिर से वो जो ना उल्टी बात बोला, ये कपड़े कभी देखे हैं तुमने, गांव के आदमी इस तरह से बोल करके, और कहता है कि यहाँ राजा के जो सेवक हैं या पुलिस हैं ये गिरफ्तार कर लेगी, तुमको बंद करवा देंगे, जेल में बंद करवा देंगे। जब उल्टा सीधा बोल रहा था तो भगवान ने फिर इसको दंड दिया और तीनों जन्मों के अपराध से मुक्त किया। कैसे, आपको पता है कैसे दंड दिया भगवान कृष्ण ने, एक ऐसे हाथ मार दिया, ऐसे 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 करके, और जैसे हाथ मारा उसे उसका सिर कट के जमीन में गिर पड़ा। तो इस तरह से जो है 3 जन्म के अपराध से मुक्त हुआ। तो एक तो ये चर्चा है इस तोते की जो कि 3 जन्मों में इसने अपराध किया था। इसके बाद फिर एक बात और भी सीता जी के संबंध में है कि ये पूर्व जन्म में वेदवती नाम की कन्या थी जो राजा कुशध्वज की कन्या थी, कुशध्वज नाम के राजा की कन्या थी, वेदवती नाम था, और धर्मध्वज इनके भाई थे जिनकी कन्या थी सत्यवती, और ये दोनों ही दिव्य कन्याएं हैं। सत्यवती आप जानते हैं तुलसी महारानी है, सत्यवती हम बोलते हैं सत्यवत्या नमो नमः वृंदाय तुलसी देवी है, तो सत्यवती जो है वो फिर तपस्या करती हैं और फिर जो है ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करती हैं, फिर बाद में शंखचूड़ की पत्नी बनती हैं या कहीं कहीं जलंधर की पत्नी बताया गया है, और फिर भगवान उसके पतिव्रत को भंग करते हैं, फिर बाद में जो है सत्यवती भगवान को साथ देती हैं शालिग्राम बनने के लिए, और भगवान उनको वरदान देते हैं कि तुम तुलसी बनो, तुलसी का वृक्ष बनो, तो वो सत्यवती है। और ये धर्मध्वज की कन्या थी सत्यवती और कुशध्वज की कन्या थी वेदवती। कुशध्वज की कन्या वेदवती को देख करके बहुत से राजा लोग चाहते थे विवाह करना, लेकिन कुशध्वज की इच्छा थी कि नहीं, मैं अपनी कन्या का विवाह तो भगवान से करूंगा, भगवान से करूंगा, भगवान विष्णु से करूंगा। तो फिर जितने राजा थे उन्होंने मिलकर के कुशध्वज को सोते हुए मार डाला, उनका सिर काट दिया। इसी जो है ईर्ष्या के कारण कि किसी राजा से विवाह नहीं कर रहे हैं अपनी कन्या का। लेकिन वेदवती ने अपने पिता के इस वचन को मान करके कि पिता की इच्छा पूरी करनी है, इसलिए भगवान विष्णु के अलावा और किसी से विवाह नहीं करेंगी, इसलिए वो वन में जाकर के कठोर तपस्या करने लगी। फिर ब्रजनारायण प्रभु जानते हैं वाल्मीकि रामायण से कि रावण उस समय पुष्पगमान से जो है भ्रमण कर रहा था और जहां जहां सुंदर स्त्रियों को देखता था, जो विवाहिता हूं या अविवाहिता हूं, कोई भी सुंदर स्त्री मिले तो उसका हरण कर लेता था, बलपूर्वक हरण करता था रावण। तो जब उसने वन में तपस्या करते हुए इस सुंदर स्त्री को देखा तो उसने अपने पुष्पगमान को उतार करके और परिचय पूछा कि तुम कौन हो, तुम किसकी कन्या हो है? और यहां तपस्या क्यों कर रही हूं? तो वेदवती ने अपना परिचय दिया और अपने पिता की इच्छा बताई और अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसने भी निश्चय किया है कि भगवान विष्णु के अलावा और किसी को पति नहीं बनाएगी। तो उस समय रावण, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत दुराचारी था, तो वो जो है मतलब फिर बोलने लगा कि तुम क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रही हो, ये तुम्हारा शरीर तो जो है भोगने के लिए है, तपस्या करने के लिए नहीं है, तुम मेरी पत्नी बनो, मेरे समान कोई ऐश्वर्यशाली नहीं है। इस तरह से बोल करके वेदवती को जब उसने लुभाया तो वेदवती ने साफ मना कर दिया कि विष्णु के अलावा और मैं किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी। तो फिर रावण कहता है कि देखो, तुम किसी को पति बनाना चाहती हो या नहीं बनाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाना चाहता हूं तो मैं बना लूंगा, मेरे पास शक्ति है। और उसने वेदवती के केसों को पकड़ लिया। जैसे वेदवती केसों को पकड़ा, वेदवती ने तुरंत ही अपनी उंगलियों से अपने केस काट लिए, क्योंकि उनके पास दिव्य शक्ति थी, तो उंगलियों ने ही चाकू का काम किया और केस काट दिए। और रावण के हाथ में क्या रहा? उसके केस रहे। और वेदवती जो है बहुत ही गुस्सा होकर के रावण को शाप देती है, कहती है कि दुष्ट, चूंकि तूने मुझे अपवित्र करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं शाप देती हूं कि तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। तो फिर वही वेदवती ने उसी समय योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया रावण के सामने ही। और फिर ये मिथिला के उस क्षेत्र में उत्पन्न हुई जनक जी की कन्या के रूप में, है ना। तो रावण, वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि एक समय रावण ने भी विचार किया था कि ये वही वेदवती हैं जिन्होंने मुझे साथ दिया था, और ये बहुत ही पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, जिनका मैंने अनादर किया था, और अब ये जो है ना मेरी मृत्यु का कारण बनेंगी। इस तरह से रावण को याद आता है कि एक दिन ऐसा था जबकि मैंने अपराध किया था वेदवती का। फिर सीता जी जनक की पुत्री हैं, इसलिए इनको जानकी कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं जनक नाम के राजा बहुत से हुए हैं, जनक नाम के राजा बहुत से हुए हैं। महाराज निमी के वंश में जनक हुए। निमी महाराज का चूंकि शरीर छूट गया था और कोई संतान नहीं थी, तो ब्राह्मणों ने उनके शरीर का मंथन किया, तो उनके शरीर के मंथन से, उनके मृत शरीर के मंथन से एक बालक जो उत्पन्न हुआ तो उसका नाम जनक रखा गया है। जन्मना जनकः स्वभूत और वैदेहस्तु विदेहजा। विदेह जनक निमि को विदेह कहा जाता है क्योंकि वो शरीर छोड़ चुके थे और फिर अपने शरीर में वापस नहीं आना चाहते थे, इसलिए देवताओं ने फिर व्यवस्था की कि वे सब प्राणियों की पलकों में निवास करेंगे। तो निमि को विदेह कहा जाता है और विदेह से उत्पन्न होने के कारण, विदेह के पुत्र होने के कारण उस बालक को क्या कहा गया? वैदेह है, वैदेह है। तो वैदेह नाम पड़ा उस बालक का और जनक नाम पड़ा। जनक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि फिर निमि की वंश का जनक वही हुआ। जनक माने जानते क्या है? पिता, है ना। क्योंकि निमि का वंश नष्ट हो गया था तो निमि के वंश का जो है ना जनक यानी जन्म देने वाला वो बालक था, इसलिए वो जो है जनक कहलाया और वैदेह कहलाया। और उसके फिर वंश में जितने भी राजा हुए हैं वे सब जनक कहलाए। तो संस्कृत की भाषा के अनुसार जो है जनक का पुत्र भी जनक ही कहलाता है, वैदेह का पुत्र भी वैदेह कहलाता है। तो ये सब जो है ना राजा जनक हुए हैं। और श्रीमद् भागवत में ये सब वंश परंपरा नवे स्कंद में है कि उस जनक से जो ना फिर और दूसरे जनक हुए उनका नाम क्या था, फिर तीसरे जनक का नाम क्या था, जो कि उस वंश में जितने राजा सब जनक कहलाते हैं। तो जनक को तो उपाधि भी आप कह सकते हैं कि जनक तो उपाधि है या वैदेह भी उपाधि है, लेकिन उनका नाम वास्तव में क्या था जो सीता के पिता थे? शिरध्वज, शिरध्वज नाम के राजा थे। और आप जानते हैं भगवान कृष्ण के समय में भी एक जनक थे उन्हीं के वंश में। कृष्ण के समय में भी एक जनक थे मिथिला के राजा, जहां भगवान कृष्ण भी गए थे उनसे मिलने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए,